एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने ना सिर्फ जर्मन साहित्य बल्कि दुनिया भर के साहित्य पर एक गहरी छाप छोड़ी है। गुंटर ग्रास का बहुत ही मशहूर और हाँ, कहना पड़ेगा काफी विवादास्पद उपन्यास द टिंड्रम।
नमस्कार। हाँ, बिल्कुल सही कहा। द टिंड्रम, या जर्मन में कहें तो डाई ब्लेस्ट्रॉमल, ये एक ऐसी किताब है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, शायद थोड़ा परेशान भी करती है, लेकिन इसे भूलना मुश्किल है।
और इसके लेखक गुंटर ग्रास 1999 में नोबेल पुरस्कार विजेता। वो उन जर्मन लेखकों में से थे जो अपने देश के मुश्किल अतीत का, खासकर नाजी दौर का, सामना करने से कतराते नहीं थे।
बिल्कुल, उनका मकसद ही यही था, जर्मनी के उस काले अध्याय को कुरेदना जिसे शायद बहुत लोग भुलाना चाहते थे। वगंगन हाइट्स बिवल्टीगुंग कहते हैं इसे जर्मन में, अतीत से जूझना।
और उनका अंदाज वो भी बहुत अलग था, कोई सीधी सादी कहानी नहीं।
हाँ, मतलब उसमें जादुई यथार्थवाद है, तीखा सामाजिक व्यंग्य है, और एक अजीब सा बेचैन करने वाला हास्य भी। वो पाठक को पकड़कर सच के सामने खड़ा कर देते हैं, चाहे वो कितना ही असहज क्यों ना हो।
ये उनकी मशहूर डांसिंग ट्रिलोजी की पहली किताब है, और जब ये 1959 में छपी थी तो हंगामा हो गया था, है ना?
अरे हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो बहुत तारीफ हुई, कहा गया कि ये तो मास्टरपीस है, दूसरी तरफ ईशा निंदा और अश्लीलता के आरोप भी लगे, काफी रोष था लोगों में, लेकिन धीरे धीरे इसकी अहमियत समझी गई।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस जटिल परतदार उपन्यास की कहानी को, इसके किरदारों को और इसके जो मुख्य विषय हैं उनको जरा गहराई से समझें।
हाँ, कोशिश करते हैं। तो कहानी सुना कौन रहा है? ये है ऑस्कर मात्सेरात। वो 1950s के दशक में है, पश्चिम जर्मनी के एक मानसिक अस्पताल में।
अच्छा, अस्पताल से।
हाँ, और उम्र है 30 साल, लेकिन शरीर बिल्कुल 3 साल के बच्चे का है, और वहीं से अपने टिन ड्रम के साथ वो अपनी आत्मकथा लिख रहा है।
और यहीं से इस उपन्यास का वो सबसे अनोखा, सबसे बुनियादी विचार सामने आता है ना? ऑस्कर का 3 साल की उम्र में ये तय करना कि वो अब बड़ा नहीं होगा।
बिल्कुल, ये कोई बीमारी या हादसा नहीं था, ये उसका सचेत फैसला था। अपने 3रे जन्मदिन पर उसे मिलता है एक लाल और सफ़ेद रंग का टिन का ड्रम, और उसी दिन वो तय कर लेता है, मुझे इस बड़ों की दुनिया में नहीं जाना।
लेकिन क्यों? मतलब इतनी छोटी उम्र में ऐसी नफरत?
उसे बड़ों की दुनिया पाखंडी लगती है, झूठी लगती है, और उसे आने वाले पागलपन का अंदाज़ा हो जाता है। तो वो क्या करता है, तहखाने की सीढ़ियों से जानबूझकर खुद को गिरा लेता है।
ताकि सबको लगे कि एक हादसा था।
हाँ, और इसलिए उसका कद रुक गया।
हाँ, बिल्कुल।
और फिर उसके पास होते हैं 2 हथियार, जैसे आपने कहा।
एक तो वो टिन का ड्रम।
हाँ, उसका प्यारा टिन ड्रम। वो उसे सिर्फ बजाता नहीं है, वो उसके जरिए अतीत को याद करता है और कभी कभी वर्तमान में गड़बड़ी भी पैदा करता है। और दूसरा हथियार,
उसकी आवाज, वो चीख जो शीशे तोड़ सकती है।
सही, एक ऐसी भेदी चीख जो विनाश का, रुकावट डालने का प्रतीक है।
और कहानी का माहौल, वो डांजिक शहर, युद्धों के बीच का वो फ्री सिटी जो आज पोलैंड का गदांस्क है।
हाँ, जहाँ जर्मन और पोलिश संस्कृति साथ साथ थी, लेकिन तनाव भी था। वो शहर जैसे खुद यूरोप के बंटवारे का एक छोटा सा नक्शा था।
और ऑस्कर का परिवार भी उसी तनाव को दिखाता है। उसकी माँ आग्नेस मात्सेरात।
हाँ, आग्नेस। वो एक जर्मन पति अल्फ्रेड और अपने पोलिश कजिन और प्रेमी यान ब्रॉन्स्की के बीच फंसी हुई है। उसकी कहानी में डांजिक की वो दुविधा, कैथोलिक अपराध बोध, कामुकता, सब कुछ झलकता है।
और पिता, मतलब दो संभावित पिता हैं, एक अल्फ्रेड मात्सेरात, जर्मन।
हाँ, अल्फ्रेड एक छोटा दुकानदार, ज्यादा सोचता नहीं, बस सुविधा देखता है, इसीलिए नाजी पार्टी का सदस्य बन जाता है। वो उन लाखों आम लोगों का प्रतीक है जिनकी उदासीनता ने, अवसरवादिता ने नाजी अत्याचार को बढ़ने दिया, नैतिक रूप से कमजोर, खोखला सा।
और दूसरा है यान ब्रॉन्स्की, पोलिश प्रेमी, या शायद असली पिता।
यान, वो रोमांटिक है, नरम दिल है, लेकिन अंत में बेअसर साबित होता है। वो डांजिक की पोलिश आत्मा जैसा है, खूबसूरत पर शायद नाजुक।
और ऑस्कर, उसे खुद नहीं पता कि उसका पिता कौन है, ये कन्फ्यूजन भी शहर के पहचान के संकट जैसा ही है।
बिल्कुल, और इन सब के बीच वो 3 साल का दिखने वाला ऑस्कर सब देख रहा है, एक तरह से दर्शक है। लेकिन क्या उसकी बातों पर पूरी तरह यकीन किया जा सकता है?
वही तो, वो एक अविश्वसनीय कथावाचक है ना? कभी कहता है मैं, कभी कहता है ऑस्कर ने ये देखा, जैसे वो खुद अपने अतीत के कामों से दूरी बना रहा हो।
हाँ, और वो दिमाग से बहुत तेज है पर भावनात्मक रूप से अविकसित, अहंकारी भी है। और न भूले वो लिख रहा है एक मानसिक अस्पताल से, तो ग्रास हमें हमेशा शक में रखते हैं, क्या ये सच है या उसके दिमाग की उपज, ये सब उसकी खंडित पहचान का हिस्सा है।
और यही वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जो शायद उपन्यास के केंद्र ने है, व्यक्ति का विरोध बनाम इतिहास का वो बड़ा कुचल देने वाला पहिया। क्या सिर्फ शामिल न होने से इनकार करना काफी है, या ये भी एक तरह की मिलीभगत है?
सही सवाल है। उपन्यास का पहला हिस्सा हमें युद्ध से पहले के डांजिंग में ले जाता है। ऑस्कर अपने ड्रम के साथ बड़ा हो रहा है, शहर में बढ़ते तनाव को देख रहा है।
वो नाजी रैली वाला सीन तो बहुत मशहूर है।
हाँ, वो कमाल का है। नाजी सैनिक एकदम अकड़कर मार्च कर रहे हैं और ऑस्कर वो छुपकर अपने ड्रम पर ऐसी धुन बजाता है कि सब वॉल्ट्स नाचने लगते हैं।
सोचकर ही हंसी आती है।
बिल्कुल, वो उनकी उस कठोर विचारधारा की बेतुकीपन को एक पल में उजागर कर देता है। लगता है कि कला में कितनी ताकत है, विरोध की।
लेकिन फिर कहानी का मिजाज बदलता है। आग्नेस, उसकी माँ, उसका क्या होता है?
आग्नेस का अपराध बोध बढ़ता जाता है। अल्फ्रेड और यान के बीच का तनाव, उसकी अपनी दबी इच्छाएं, वो निराशा में डूब जाती है और फिर बहुत अजीब तरह से आत्महत्या कर लेती है, बहुत सारी मछलियां खाकर।
बहुत विभत्स है ये तो।
हाँ, ग्रास ऐसी विभत्स चीजों से हिचकते नहीं, जैसे आग्नेस की मौत उस शहर के, उस दुनिया के नाजुक संतुलन के टूटने का भयानक संकेत हो। और फिर आता है 1939,
जर्मनी का पोलैंड पर हमला।
हाँ, और वो ऐतिहासिक घटना, पोलिश पोस्ट ऑफिस की रक्षा, ऑस्कर और यान ब्रॉन्स्की वहीं होते हैं। पोलिश लोग बहादुरी से लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं, यान पकड़ा जाता है।
और इसमें ऑस्कर की भी भूमिका होती है।
शक तो यही है, कहानी ऐसे बताई जाती है कि लगता है शायद ऑस्कर की वजह से ही यान को छुपने की जगह नहीं मिली या वो पकड़ा गया। बाद में यान को फांसी दे दी जाती है और ऑस्कर के मन पर अपराध बोध का एक भारी बोझ आ जाता है।
ये तो कहानी का एक बड़ा मोड़ है। यहाँ से उपन्यास का दूसरा हिस्सा युद्ध के साल शुरू होते हैं
और एक नए किरदार की एंट्री होती है, बेबरा।
हाँ, बेबरा वो एक सर्कस में काम करने वाला बौना कलाकार है, लेकिन वो बहुत दुनियादार है। वो ऑस्कर का एक तरह से गुरु बन जाता है।
उसका एक फलसफा भी है ना, कुछ अजीब सा।
हाँ, वो ऑस्कर को सिखाता है हमेशा जीतने वालों के पक्ष में रहो, लेकिन खबरदार उनमें से एक कभी मत बनो।
बहुत ही सिनिकल लेकिन शायद उस वक्त के हिसाब से प्रैक्टिकल नजरिया।
और वो ऑस्कर को अपने थिएटर ग्रुप में ले लेता है।
हाँ, और अब ऑस्कर क्या करता है, वो बेबरा के ग्रुप के साथ कब्जे वाले यूरोप में घूमता है और जर्मन सैनिकों का मनोरंजन करता है अपने ड्रम से।
कहाँ तो वो नाजी रैली बिगाड़ रहा था और कहाँ अब उन्हीं की फौज का मनोरंजन, ये तो बड़ा नैतिक पतन है।
बिल्कुल, ये कला के समझौते का, युद्ध मशीन की सेवा करने का एक स्याह उदाहरण है। ग्रास ये सवाल उठाते हैं कि क्या कला हमेशा पाक साफ रह सकती है।
इसी दौरान उसका एक प्रेम संबंध भी होता है।
हाँ, मंडली में ही एक और बौनी कलाकार है, रोस्विथा रागुना। ऑस्कर को उससे प्यार हो जाता है। एक छोटा सा नाजुक सा रिश्ता बनता है इस युद्ध की विभीषिका के बीच, लेकिन वो भी दुखद रूप से खत्म होता है।
कैसे?
नॉर्मांडी में जब मित्र देशों की सेना उतरती है, उसी हमले में रोस्विथा मारी जाती है।
ऑस्कर का दिल टूट जाता है।
फिर वो वापस डैंजिग आता है।
हाँ, डैंजिग लौटता है। युद्ध के आखिरी हताशा भरे दिन चल रहे हैं, सोवियत सेना शहर में घुस रही है
और फिर उसके जर्मन पिता अल्फ्रेड की मौत होती है।
वो भी बड़ी अजीब तरीके से।
हाँ, बहुत। रूसी सैनिक घर में घुस आते हैं, अल्फ्रेड घबरा जाता है। उसने अपनी नाजी पार्टी का पिन छुपा रखा होता है, घबराहट में वो उसे निगल लेता है
और उसका दम घुट जाता है।
हाँ, और यहाँ भी शक की सुई ऑस्कर पर जाती है, क्या उसने जानबूझकर वो पिन अल्फ्रेड को पकड़ाया था? कहानी ये सवाल खुला छोड़ देती है।
एक के बाद एक मौतें और हर मौत में ऑस्कर की संदिग्ध भूमिका।
बिल्कुल, और अल्फ्रेड के अंतिम संस्कार वाले दिन एक और नाटकीय घटना होती है। ऑस्कर का बेटा या शायद सोतेला भाई कर्ट, जो आग्नेस की मौत के बाद पैदा हुआ था, वो ऑस्कर पर पत्थर फेंकता है।
और उसी पल
ऑस्कर तय करता है, अब मैं बड़ा होऊंगा, और वो लड़खड़ाकर अपने पिता अल्फ्रेड की खुली कब्र में गिर जाता है। और उसी क्षण दर्द के साथ उसका रुका हुआ शारीरिक विकास फिर से शुरू हो जाता है।
क्या अजीब और प्रतीकात्मक अंत है इस हिस्से का। पिता की कब्र में गिरकर बड़ा होना।
हाँ, और यहाँ से शुरू होता है उपन्यास का तीसरा और आखिरी हिस्सा, युद्ध के बाद का पश्चिमी जर्मनी। ऑस्कर अब शारीरिक रूप से व्यस्क है,
लेकिन
उसका शरीर ठीक से विकसित नहीं होता। उसके पीठ पर कुबड़ निकल आता है।
सही,
वो एक कुबड़ा वयस्क है, डसलडॉर्फ शहर में है। ये जर्मनी के आर्थिक चमत्कार का दौर है। हर कोई जैसे अतीत को भूलकर पैसा कमाने, देश बनाने में लगा है।
और ऑस्कर इस नई दुनिया में क्या करता है?
पहले वो कब्रों के पत्थर तराशने का काम करता है, फिर एक मॉडल के तौर पर काम करता है, और फिर उसे अपने पुराने हुनर की याद आती है।
टिंड्रम की?
हाँ, वो जैज क्लबों में अपना टिंड्रम बजाना शुरू करता है और देखते ही देखते मशहूर हो जाता है। पैसा, शोहरत सब मिलता है उसे।
ये भी एक तरह का व्यंग्य है ना? जैसे पूरा समाज अपने अतीत के बोझ को तरक्की की चकाचौंध के नीचे छुपा रहा है, वैसी ऑस्कर अपनी शोहरत से अपने अंदर के कुबुड़ को, अपने अपराध बोध को ढकना चाहता है।
बिल्कुल, लेकिन अतीत कहाँ पीछा छोड़ता है? वो एक नर्स के कत्ल के मामले में फंस जाता है।
क्या उसने कत्ल किया था?
नहीं, उपन्यास से तो ये लगता कि वो निर्दोष है, लेकिन फिर भी वो जुर्म कबूल कर लेता है।
क्यों?
शायद इसलिए कि उसे बाहरी दुनिया से ज्यादा सुरक्षित वो मानसिक अस्पताल लगता है जहां उसे भेज दिया जाता है। शायद वो सजा चाहता है उन अपराधों के लिए भी जो उसने किए थे या जिनमें वो शामिल था।
और वहीं अस्पताल में बैठकर वो अपनी ये पूरी कहानी लिखता है।
हाँ, और उपन्यास का अंत भी बहुत अस्पष्ट और बेचैन करने वाला है।
क्या होता है अंत में?
ऐसा लगता है कि उसे अस्पताल से रिहाई मिलने वाली है, शायद उसकी 30वीं सालगिरह पर, लेकिन उसे एक वहम है, एक डर है। उसे लगता है कोई काली डायन उसका पीछा कर रही है।
काली डायन, ये कौन है?
ये प्रतीक है, शायद उसका अपना अपराध बोध, उसका अतीत, मौत, वो चीज जिससे भागा नहीं जा सकता। कहानी खत्म होती है ऑस्कर के इस डरे हुए सवाल के साथ, वो कौन है, मेरा पीछा कौन कर रहा है?
और पाठक भी उसी अनिश्चितता, उसी डर के साथ रह जाता है, कोई साफ जवाब नहीं।
बिल्कुल, ग्रास कोई आसान जवाब नहीं देते।
इस पूरी कहानी में ग्रास ने कई महत्वपूर्ण विषयों को बुना है। सबसे प्रमुख शायद अपराध बोध और याददाश्त है।
हाँ, ये केंद्रीय विषय हैं। ऑस्कर जैसे एक जिंदा मेमोरियल है, एक ऐसे देश में जो भूलना चाहता है। उसका ड्रम यादों को जगाने का, कुरेदने का औजार है, और वो काली डायन दिखाती है कि अपराध बोध से मुक्ति नहीं है, वो पीछा करता है।
और कलाकार की भूमिका का सवाल भी बार बार आता है।
हाँ, कला कब विरोध है और कब वो सत्ता का हथियार बन जाती है, ऑस्कर की यात्रा ये दिखाती है। नाजी रैली में विरोध से लेकर सैनिकों के मनोरंजन तक, कला भी नैतिक समझौतों से अछूती नहीं है।
ग्रास का वो ग्रोटेस का इस्तेमाल भी बहुत प्रभावी है, विभत्स चीजें।
बिल्कुल, ऑस्कर का बौनापन, आगेनेस की मौत, अल्फ्रेड का दम घुटना, ये सब उस युग की, उस समाज की आंतरिक विकृति, नैतिक कुरूपता को दिखाने का तरीका है। ग्रास जैसे कहते हैं कि जो सामान्य दिख रहा था वो असल में घिनौना और बेतुका था।
पहचान का मुद्दा भी है, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर।
हाँ, ऑस्कर का अपने पिता को लेकर संदेह डैंजिग्स शहर के जर्मन पोलिश पहचान के संकट का प्रतीक है। उसका बड़ा होने से इनकार करना भी पहचान से इनकार है।
और वो विरोध बना मिली भगत वाला सवाल, ऑस्कर की यात्रा कहाँ ले जाती है उसे?
वो विरोध से शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे निष्क्रियता और फिर एक तरह की मिली भगत में चला जाता है। बच्चा बने रहकर वो जिम्मेदारी से बचता है। ग्रास हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि शिकार होने और जिम्मेदार होने के बीच कितनी महीन रेखा है।
लिखने का अंदाज भी बहुत खास है, वो अविश्वसनीय कथावाचक।
हाँ, ऑस्कर पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। फिर उसका मैं से ऑस्कर पर शिफ्ट होना, ये अलगाव, ये टूटन, ये सब कहानी कहने के तरीके में भी झलकता है।
और जादुई यथार्थवाद, वो अविश्वसनीय घटनाएं जो बिल्कुल सच की तरह लगती हैं।
हाँ, जैसे ऑस्कर का कद न बढ़ना या उसकी चीख, ये यथार्थ से भागना नहीं बल्कि रूपकों के जरिए यथार्थ की गहरी छिपी हुई परतों को दिखाना है।
मुख्य प्रतीक भी बहुत शक्तिशाली हैं, टिन ड्रम।
हाँ, ड्रम तो जैसे उपन्यास का दिल है, याददाश्त, विरोध, कला, बचपन, सब कुछ। फिर वो शीशे का टूटना, विनाश, पाखंड को भेदना, और आखिर में वो काली डायन, अपराध बोध, अतीत, अंतिम हिसाब।
तो कुल मिलाकर द टिन ड्रम पढ़ना कोई आसान सैर नहीं है, ये एक चुनौती है।
बिल्कुल, ये बेचैन करती है, परेशान करती है। ग्रास आपको एक ऐसे किरदार के साथ खड़ा कर देते हैं जो नायक नहीं है, शायद खलनायक भी नहीं, बस जटिल है, और आपको इंसानियत के अंधेरे कोनों में झांकने पर मजबूर करते हैं।
इसमें हास्य भी है, लेकिन वो काला हास्य है, दर्द भी है, विभत्सता भी। ये अच्छे बुरे की सारी आसान धारणाओं को तोड़ देती है।
हाँ, और ये पाठक को बहुत सारे सवालों के साथ छोड़ देती है। अपराध बोध क्या है, सामूहिक पागलपन के दौर में व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या है, उस अतीत के साथ कैसे जिया जाए जिसे ना भूल सकते हैं ना याद करके चैन पा सकते हैं।
ग्रास जवाब नहीं देते, बस इन सवालों को और गहरा कर देते हैं। ये किताब वाकई इतिहास, याददाश्त और इंसान की प्रकृति को देखने का नजरिया बदल सकती है।
सच में ये कृति हमें इतिहास की उन सच्चाइयों का सामना कराती है जिनसे हम बचना चाहते हैं, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम सब जाने अनजाने कैसे इतिहास की बड़ी घटनाओं के भागीदार बन जाते हैं।
और ये भी दिखाती है कि अतीत को दबाने, भूलने की कोशिश कैसे हमें भीतर से विकृत कर सकती है, ठीक ऑस्कर के उस कुबड़ की तरह जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि नैतिक और ऐतिहासिक बोझ का भी प्रतीक है।
बिल्कुल सही।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।